ग्रंथाधिराज समयकार जी है आचार्य कुंदकुंड स्वामी की यह अनुपम रचना भरत क्षेत्र के अभागे जीवों को मानो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के विरह को बुला देने में समर्थ। यह कोई अद्भुत महान भाग्य ही हमारे को समझना चाहिए कि 2000 वर्ष पहले लिखी हुई ये पंक्तियां और ये ग्रंथ हमारे पास में आज भी परिपूर्ण जो का त्यों उपलब्ध है। नहीं तो कुछ वर्षों पहले हमारे दादाजी की लिखी हुई 4 पेज की कुछ लेख कुछ कविता ढूंढने जाओ तो घर में मिलती नहीं। कुछ वर्षों पहले की तो छोड़ो, कुछ दिनों पहले कुछ महीनों पहले अपन ने कुछ लिखा हो किसी पेज पर वो पेज घर में मिलता नहीं।
बात सही है।
कुछ दिनों और कुछ वर्षों में ही जब कोई चीज नहीं मिलती है ऐसे समय में 2000 वर्ष पहले की ये विषय वस्तु हमारे पास में पूरी की पूरी उपलब्ध है तो ये कुछ हमारा ही महाभाग्य है।
बात सही है।
पिछले 2000 वर्षों में इस समय सार ने अनगिनती लोगों का जीवन बदला है। मैंने शायद कहा था श्रीमद जी के हाथ में जब समय सार ग्रंथ आया तो रत्न भर करके दे दिए उन्होंने। ये ऐसा बहुमूल्य है जिसकी कीमत अनगिनती रत्नों से भी नहीं की जा सकती। जब ये ग्रंथ गुरुदेव कांजी स्वामी के हाथ में आया तो उनके मुंह से तेज ही निकल गया, यह ग्रंथ तो अशरीरी होने का महाशास्त्र है। हाँ तो अशरीरी थवानो महाशास्त्र है। पंडित जयचंद जी चावड़ा हो चाहे पांडे राजमल जी हो ऐसे ये अपने वर्णी जी हो, अनगिनती लोग ऐसे हैं जिनका जीवन इस समय सार को पढ़ करके बदल गया। बनारसी दास जी जैसे लोग समय सार पढ़ करके और पांडे राजमल जी की टीका पढ़ करके यद्यपि स्वच्छंदी हो गए थे तो गोमट सार पढ़ करके लाइन पर आए। तो ये जो समय सार ग्रंथ है ये बड़ा अपूर्व है। आचार्य कुंदकुंड स्वामी ने अंतर की गहराई में बैठकर एक एक गाथा और उसके एक एक शब्द लिखे,
अनुभव
से लिखे। कल हमने आपके बीच में चर्चा की थी तब हमने ये कहा था कि ये आगम नहीं परमागम है, इसमें अनुभव की बात है। इसमें हर गाथा और पंक्ति में आचार्य कुंदकुंड स्वामी का अनुभव रस टपकता हुआ दिखाई देता है, अनुभव रस से खड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे देखिए मैं कहा करता हूँ इस तरह की बात कि जब किसी रस से भरे हुए बर्तन से उसमें से गुलाब जामुन निकालो, रसगुल्ला निकालो और दूसरे बर्तन में डालो, किसी को परोसने के लिए डालो, तो जो हाथ हमारा उसके अंदर गया था ना
रस में
बाहर निकलता है तो रस के टपके गिरे बिना नहीं रहते।
बस सही है।
ऐसे ही जिन महामुनिराज का उपयोग अपने अंतरंग रस में डूबा और जब उपयोग निकलकर बाहर आया तो वाणी में लेखनी में वो अनुभव रस टपके बिना नहीं रहता। वही रस दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन दिन रात क्या करते थे वे। आत्मा का चिंतन है वाणी में आत्मा, चिंतन आत्मा का, वाणी में आत्मा, लेखनी में आत्मा। आत्मा का चिंतन है वाणी में आत्मा, और समरस में सने हुए लीन हुए आत्मा। अरे आत्मा ही तार है ये उनकी पुकार है, सिर्फ आत्मा ही तार है। यहाँ तो छठी गाथा में तो उस शुद्ध स्वरूप को जिस गहराई से बतलाया है, ये तो मानो साक्षात उस शुद्ध आत्म तत्व को हमारे हथेली पर धर दिया है। बहुत सुंदर और मार्मिक गाथा। पिछले चार दिनों से चर्चा चल रही है, आज पंचम दिवस है। देखिए क्या कहते हैं गाथा में, मूल गाथा। हो दिया पमत्तो पमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणंति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव न प्रमत्त है न प्रमत्त है बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात रह तो वही है। न प्रमत्त है न प्रमत्त है, प्रमत्ता प्रमत्त नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कही एक ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव कैसा है वो ज्ञायक भाव? सदाकाल एक रूप है। और इस भांति कहते शुद्ध, ये तीसरी बात कही। प्रमत्ता प्रमत्त नहीं है, ज्ञायक भाव है, और इस प्रकार वो शुद्ध है। ये सारी बातें कैसे कहते हो कि जो है सो है?
है तो है।
कितनी बातें कही भाई साहब। हम वो तत्व हैं जिस तत्व में कभी परिवर्तन नहीं होता। हम वो ज्ञायक स्वभाव हैं जो ज्ञायक स्वभाव त्रिकाल है। हम वो ज्ञायक भाव हैं जिस ज्ञायक भाव में मलिनता नहीं आती, किसी तरह की अशुद्धता प्रवेश नहीं करती। ऐसा ज्ञायक तत्व ये सदाकाल मौजूद है अंदर। उसको दिखा रहे हैं यहाँ पर, उसको देखने की दृष्टि दे रहे हैं। एक बार उस ज्ञायक स्वरूप को देखो, कैसा है वो ज्ञायक स्वरूप। देखो नहीं कहते भजन में, जिस देश में जिस देश में जिस हाल में रहो ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। किसी भी हाल में रहो, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं सब काम जगत के किया करे, नहीं राग किसी से करते हैं। ऐसे ज्ञायक, उस ज्ञायक की यहाँ चर्चा चल रही है। प्रमत्ता प्रमत्त से परे कई बातें प्रमत्ता प्रमत्त के संदर्भ में हुई। यहाँ टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने ये बात कही, अनादि सत्ता स्वरूप है। याद हो जाने चाहिए शब्द, किसी से उत्पन्न न हुआ होने से ये भगवान आत्मा, ये ज्ञायक स्वरूप अनादि सत्ता स्वरूप है, और कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। वाह, अनादि सत्ता स्वरूप भी है और अनंत भी है, और नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। ज्ञानियों को नित्य उद्योत रूप है, ज्ञानियों को निरंतर पकड़ में आता है, ज्ञानियों के भाव भाषण में निरंतर आता है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, वह संसार की अवस्था में, यहां से चर्चा की थी कल हमने, वह संसार की अवस्था में, संसार दशा में अनादि बंद पर्याय की निरूपणा से, संसार दशा में है, वो संसार दशा की व्याख्या करो। संसार किसका नाम, संसार में क्या किया? संसार में परिभ्रमण किया,
अनंत काल से,
अनंत काल से अनादि काल से लेकर अब तक अनंत काल बीत गया, उस अनंत काल में ये परिभ्रमण करता रहा। उस प्ररूपणा की विवक्षा से देखो, उसकी अपेक्षा से देखो, अनादि बंध पर्याय की अपेक्षा से देखो, तो कहते शीर नीर की भांति, दूध पानी की तरह है वो, कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर। तो ये भगवान आत्मा अनादि काल से बंधा हुआ है, अनादि काल से कर्मों में फंसा है, आज तक एक क्षण मात्र भी ये कार्मण शरीर से रहित नहीं हुआ। ये औदारिक और वैक्रियक आदि देह तो इसने अनंत बार छोड़ी, लेकिन देह से मुक्त कभी नहीं हुआ। क्या मतलब? ये देह तो छूट गई, लेकिन यदि असली देह से सदा के लिए छूट जाता तो फिर दोबारा देह को धारण नहीं करता। ऐसा देह तो छोड़ता ही है ना, देह तो छूटती है ना, कि तुम औदारिक को ही शरीर समझते हो। कार्मण भी शरीर है, तेजस भी शरीर है, तेजस और कार्मण शरीर का संबंध अनादि से है। ऐसा कहा है अनादि संबंधे च, अनादि से संबंध है तेजस और कार्मण शरीर का। और जो अनादि संबंध है एक बार छूट गया तो फिर ये आचार्य देव विश्वास दिलाते हैं फिर वो अनंत काल तक कभी दोबारा नहीं आएगा। किताब छोड़ू क्यों? जो चीज इतनी पुरानी है मेरे पास में, मैं क्यों छोड़ू? जिसने मेरा साथ निभाया है अनादि काल से, आप क्या चाहते हो मैं उसका साथ छोड़ दूं? मेरे हर परिस्थिति में साथ रहा है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? ये मिथ्यात्व हो चाहे अनंतानुबंधी हो, दर्शन मोह हो, अनादि काल से मैं कहीं भी चला गया हूँ, नरक में गया चाहे निगोद में गया, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं कैसे छोड़ दूं उसको? ये सुन भाई, तू इसका साथ नहीं छोड़ रहा है, तुझे पता है कि इसने तेरा साथ नहीं छोड़ा या वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति यह है, इसका साथ पकड़े रहने की वजह से नरक निगोद हुआ।
बात सही है।
क्या नरक निगोद में परिभ्रमण क्यों हुआ? चतुर्गति में भटका क्यों? उसके पीछे कारण क्या था कि तूने इसको नहीं छोड़ा, तूने इस मिथ्या मान्यता को नहीं छोड़ा, तूने इस विपरीत बुद्धि को नहीं छोड़ा, इस वजह से ऐसा हुआ है। कुछ एक बार गंभीरता से विचार कर यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य जी, देखो क्या कहते हैं। ऐसा अनेक रूप होने पर भी, ऐसा कर्म पुद्गलों के साथ में एक रूप होने पर भी, कर्म और पुद्गल, कर्म पुद्गलों के साथ में एक मेक, कर्म पुद्गलों के साथ में तादात्म्य, तादात्म्य जैसा दिखता है, तादात्म्य नहीं है, ध्यान रखना, तादात्म्य होगा तो छूटेगा नहीं, लेकिन कर्म पुद्गलों के साथ में ऐसे घुले मिले कि उनमें आप अंतर नहीं कर सको, आप उनको चांट नहीं सको, आपको चांटने में निकालने में तकलीफ हो। ऐसा हमने कल उदाहरण दिया था आपको, गेहूं के दानों में मिले हुए कंकर तो चांटे जा सकते हैं, मिल जाते, निकल जाते हैं, वो तो अलग अलग साफ साफ दिखते हैं, अलग ही दिखते हैं वो तो, लेकिन दूध में पानी हो, बोलो निकालो, दूध में पानी है, निकालो उसको, क्या कर सकते हैं आप?
उनकी क्रिया करनी चाहिए निकालने के लिए,
एक विशेष क्रिया होगी, गेहूं से कंकरों को अलग करने के लिए किसी विशेष क्रिया की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा बालक भी, साधारण सा व्यक्ति भी बिना किसी विशेष मेहनत के गेहूं से कंकरों को अलग कर सकता है, लेकिन दूध से पानी को अलग करने के लिए तो हंस जैसी प्रज्ञा चाहनी चाहिए, हंस जैसा ये कला चाहिए, खीर नीर को अलग अलग कर देने वाली, हंस में कैसी सामर्थ्य है, दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, गजब है कला उसके पास। दूध और पानी ये दो अलग अलग बर्तनों में नहीं था जो एक पी लिया और पानी छोड़ दिया, दूध में मिले हुए पानी में से उसमें से वो हंस दूध दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। क्या बात है भाई साहब, ये कैसी बात है? इसलिए आचार्य देव कई नीतिकार तो ऐसी बात कहते हैं महेंद्र भाई, वो कहते हैं समय बहुत सीमित है तुम्हारे पास में,
सही है,
काम बहुत है और विद्या बहुत है, शास्त्र बहुत है, क्या क्या पढ़ो, कितना कुछ करोगे। वो कहते हैं अनंत शास्त्रम, अनंत शास्त्रम बहुलश्य विद्या, विद्या बहुत है,
बहुत है,
शास्त्र अनंत है, विद्या बहुत है।
अनंत शास्त्रम बहुलस्य विद्या अल्पस्य कालौ, काल सीमित है,
सीमित है,
कितना सा टाइम है हमारे पास में
मालूम ही नहीं है,
इतना ही नहीं काल तो कम है। और उसमें भी क्या कह रहे हैं नीतिकार, बहुविघ्नता के, पहले ही समय कम है और ऊपर से विघ्न बाधाएं और है, एक के ऊपर एक। पहले तो हमारे पास में कितना समय है हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं कितना टाइम और बचा है हमारे पास, कल वो मर गए एक्सीडेंट में, वहां इतने मर गए, वहां विस्फोट में मर गए, वहां गोलियां चली उसमें मर गए, कल हेरिकेन आया तो उसमें इतने लोग दुर्घटना हो गई इतने मर गए, न्यूज पेपर खोल करके देखो तो रोज मरे हुए उनकी लिस्ट आती है, इतने मर गए, इनकी बैठक है, इनका ये है, इनका ये है। कितना सीमित काल है पता नहीं, 20 वर्ष है या 2 वर्ष, 2 वर्ष बचे हैं या 2 दिन, 2 दिन बचे हैं कि 2 घड़ी की भी गारंटी नहीं है, क्या पता कब अंतिक स्वर्ण आ जाए। मैंने कई बार महसूस किया ऐसा, कई लोगों से पूछा महेंद्र भाई कितने वर्ष हैं आपके पास में, तो लोग जनरली इस तरह की बात करते हैं कि हाँ ज्यादा नहीं तो 10-15 साल का है, इतना तो बोलते हैं कम से कम। मुकुल भाई आपके पास में 20 साल तो अभी अभी तो डॉक्टर को फुल चेकअप कराया था, उन्होंने भी कहा है अभी 20 साल तक तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कहने वाला चला जाता है, किसकी बात करें हम, कोई गारंटी नहीं है, किसी तरह की गारंटी नहीं है कि देह की ये कब छूट जाए, सेकंडों में चला जाता है। मेरे ताऊ जी से 92 एज होकर के उनकी डेथ हुई, जब डेथ हुई उनकी उसके एक दिन पहले मैं उनके साथ में बैठा हुआ था उनके घर पे, बातें कर रहे थे आपस में हम, तो वो अपने पोते को, बड़े बड़े बच्चे हैं उनको कह रहे थे कुछ काम के लिए, वो सुन नहीं रहे थे, तो बहुत नाराज होकर के बोले कि सुनते ही नहीं है, और साल दो साल का मेहमान हूँ और कितना रहूंगा मैं और कितना जीऊंगा। क्या बोले रमेश भाई, साल दो साल का मेहमान हूँ, सुनो साल दो साल का मेहमान उन्होंने कहा और दूसरे दिन जीवन पूरा हो गया। हमारे पास में कितना समय है, लोग मुझसे कहते हैं पंडित जी जब आपको देखते हैं ना, आप जैसे युवा लोगों को, युवा विद्वानों को देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है आगे 30-40 साल तक तो प्रभाव ना पूरी होगी। अभी कम से कम अभी युवा, अभी कम से कम आप जैसे युवा साथी जब तैयार हो गए तो 30-40 साल तक की तो कम से कम खूब प्रभावना होगी। 30-40 साल, 30-40 मिनट का भरोसा नहीं है, 30-40 सेकंड में जीवन पूरा हो सकता है। अनंत शास्त्रम बहुलक्ष्य विद्या अल्पश्य कालो, बहु विघ्न साचे, और विघ्न बाधाएं इतनी है कि कदम कदम पर कभी बीमारी हो जाती है, कभी बुखार हो जाता है, कभी बिजनेस के काम आ जाते हैं, कभी घर गृहस्थी की झंझटें हो जाती है, कभी उपयोग नहीं लगता है, कभी मनमुटाव हो जाता है, कभी कचाईयों का परिणाम हो जाता है, कुछ न मालूम चलता रहता है, कुछ न कुछ। ये विघ्न बाधाएं कम है क्या, कभी आंखें खराब हो गई, कभी ऑपरेशन हो गया, कभी हॉस्पिटलाइज हो गए, कितनी परेशानी है मतलब, ये परेशानियों का सिलसिला खत्म नहीं होता, ये चलता रहेगा। और ये कहता है कि ये परेशानी निपट जाए बस उसके बाद करूंगा, बस ये हमारे एक झंझट है, ये थोड़ी सी निपट जाए ना बस उसके बाद करूंगा, वो निपट गई तो फिर हमने कहा भैया आप तो आ रहे हो ना, आप नहीं नहीं अभी ये काम और है, बस इतना सा और हो जाए फिर करूंगा। अब भाई देखो बच्चे उनका ग्रेजुएशन हो गया है, एक बार वो बिजनेस संभाल ले गए फिर अपन फ्री है। बच्चे ने बिजनेस संभालना शुरू किया तो हमने कहा भैया आप तो आ रहे हो ना कल से स्वाध्याय में, कि नहीं नहीं अभी वो अभी इतना होशियार नहीं है, वो थोड़ा सा संभाल तो लिया है लेकिन वो अच्छे से संभालने लगे, थोड़ा सा मेरे निर्देशन में थोड़ा सा वो अच्छा हो जाए तब ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं। आज से उसने बिजनेस पे आना शुरू किया, अभी तो वो समझता ही नहीं है, अभी तो पार्टियों को पहचानता ही नहीं है, थोड़ा सा तो उसको स्टेबल होने दो, अब तो वो साल दो साल हो गए, तीन साल हो गए, अब तो वो पक्का हो गया है, अब तो आ रहे हो तुम रोजाना, कि नहीं एक बार उसकी शादी हो जाए फिर हम दोनों को काम क्या है, हम दोनों बुढ़े बुढ़िया झोपड़ी, हमें क्या लेना है, यही काम करना है, बच्चे की शादी हो जाए बस, फिर शादी हो गई अब तो फ्री है ना। अरे अभी तो आज तो शादी निपटी है, अभी थोड़ा सा पीछे के काम तो निपट जाए, आप तो पीछे ही पड़ गए हमारे। हम कहाँ पीछे पड़ गए, तुम बताओ क्या? ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। एक महात्मा जी नदी किनारे बैठे थे और किसी व्यक्ति ने आकर के उनसे पूछा, चर्चा की, तो चर्चाएं चलती थी कि भाई ये घर गृहस्थी से कैसे छूटे, मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्या करें, इसमें हमने बांध रखा है, जब तक ये जंजाल है ना महाराज, तब तक ये धर्म ध्यान होना बड़ा मुश्किल है। सुनते रहे महाराज, सुनते रहे, तो जवाब साथ दिया नहीं, वो व्यक्ति भी चला गया। रोजाना आता था वो महाराज वहीं बैठे रहे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, पांच दिन, सात दिन, पंद्रह दिन, विहार ही नहीं किया उन्होंने, गए ही नहीं। तो एक बार उसने भी प्रश्न कर लिया कि महाराज क्या बात है, इस जगह से आपको भी मोह हो गया है क्या, आप जा नहीं रहे हैं? तो महाराज ने जवाब दिया कि अरे भाई ये जो नदी बह रही है ना, ये मैं सोच रहा था कि मुझे पार जाना है तो कब ये रुके और कब मैं जाऊं। बस ये लगता है अब रुक जाएगी, अब रुक जाएगी, फिर कर लेंगे। उस व्यक्ति ने सोचा यार ये कैसे मूर्ख है, इनमें इतनी अकल नहीं है, ये नदी पार करने के लिए ये बहती हुई नदी के रुकने का इंतजार कर रहे हैं, ये कब रुकेगी। ऐसी बात थोड़ा सा उसके हाव भाव से दिखी, कह तो सकता नहीं था क्या। तो महाराज ने तुरंत कहा, क्यों तुम ये सोच रहे होंगे कि कितने मूर्ख है, नहीं नहीं महाराज। तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिला कि ओह समझ में आ गई महाराज, मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि ये घर गृहस्थी के जंजाल और झंझटें कभी बंद हो तो मैं आत्म कल्याण के मार्ग में लगूं, ये झंझटें कभी बंद होने वाली नहीं है, ये सब जो की त्यों चलती रहेगी और मुझे इसके बीच में ही आत्म कल्याण करना पड़ेगा। बहुलक्ष्य विद्या अल्पश्य कालो, बहु विघ्न साचे, बहुत विघ्न भरे हैं, विघ्न बाधाएं बहुत है, और तो और समझने समझाने वाले लोग, टोकने वाले लोग, मना करने वाले लोग, ये कहने वाले लोग सारी दुनिया में मिल जाएंगे। अरे यार अभी से कौन से मार्ग में लग गए, अब भी चक्कर में उलझ गए, खत्म हो जाएगा सब, देख लेना लाइफ का सारा एंजॉय चला जाएगा यदि आपने महेंद्र भाई का साथ पकड़ लिया तो, न कुछ खाने में रस रहेगा न घूमने फिरने में रहेगा। बोलो क्या करना है, ये तो अच्छी बात है ना, उसमें रख नहीं रहे तो फिर क्या जिंदगी नहीं रख जिएंगे, ये नहीं, वो जो मार्ग बतला रहे हैं उसका आनंद कुछ अपूर्व है, वो जो रास्ता बतला रहे हैं उसका कोई अपूर्व आनंद है। अब विषयों में ना ही रमेंगे, निजानंद पाने करेंगे, अब नहीं रुलेंगे, अब नहीं फंसेंगे। ये कह रहे हैं अनादि परंपरा को देखता है तो न मालूम कितनी बातें दिखाई देती है, न मालूम कौन कौन से दृश्य, कौन कौन सी घटनाएं दिलो दिमाग के सामने घूमती है। तू पर्याय दृष्टि से देखेगा तो ये कर्म का बंधन दिखाई देगा, तू पर्याय दृष्टि से देखेगा तो इसमें उलझा हुआ फंसा हुआ दिखाई देगा। अनादि बंध पर्याय की निरूपणा में ये कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप दिखाई दे रहा है। ओहो मैं तो कहता हूं जब अनादि बंध प्ररूपणा को देखा तो ये मानो ऐसा ही महसूस करने लग गया, ये तो ऐसा ही है, अरे तो सुधर, ये तो ऐसा ही चलेगा, ये तो ऐसा ही चलेगा। फिर किसी व्यक्ति ने कहा कि ये सुधर सकता है तो इसको विश्वास नहीं होता,
तो बहुत गाढ़ा है ना,
बहुत गाढ़ा है ना, और अनुभव है पिछला, इतना एक्सपीरियंस है, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस है, कि हुआ नहीं सही। जैसे कभी क्या होता है, कुछ ऐसा असाध्य रोग और बीमारी लग जाए हमारे को, जिस बीमारी का इलाज हमने किसी डॉक्टर से कराने का प्रयास किया, ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरे को दिखाया, फिर ठीक नहीं हुआ, फिर महीने दो महीने में किसी और का अपॉइंटमेंट लेकर के दिखाया, फिर ठीक नहीं हुआ, फिर हमने आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, एक्सरे, जो कुछ भी जो हो सकती थी थेरेपी, वो सब की हमने, फिर भी नहीं हुआ। और ऐसा करते करते 20 साल निकल गए क्या? अब हम भी सोचने लग गए अब ये नहीं होगा। ऐसा होता है?
हाँ होता है।
इतने समय बाद में अब क्या लगता है? अब कोई व्यक्ति आकर के आपको ये कहे कि यार ये तकलीफ है आपको, ये कुछ नहीं है ये तकलीफ, तो हमें अंदर ही अंदर हंसी आती है, इसको पता नहीं है मैं कितने इलाज कर चुका हूँ, इसको अभी मैं बताऊंगा ना तो ये भी सोचने लगेगा क्या है। अब वो कोई उपाय बतलाता है तो ये उपाय सुनता नहीं, हो सकता है उसके पास में सही उपाय हो सकता है उसके पास में सच्चा उपाय हो, लेकिन इसकी सुनने की रुचि नहीं होती, क्योंकि अनादि काल से या बहुत लंबे काल से इसने बीमारी का उपचार करने का प्रयास किया और इलाज हुआ नहीं। अब इसका भरोसा उठ गया, सारे डॉक्टरों से भरोसा उठ गया, और ये ऐसा मान के चल रहा है अब तो जिंदगी ऐसी चलेगी, अब तो लाइफ ऐसी चलेगी हमारी, क्या करें बोलो, उपाय क्या है भाई? कोई बता रहा है उपाय? 20 साल हो गए, हो सकता है 20 सेकंड में चला जाए, तो क्यों चिंता करता है, क्यों विकल्प करता है? ये अनादि परंपरा को देखने पर ये जैसा दिखाई दे रहा था, ये श्री गुरु मिले, ये गुरुदेव मिले हमारे को, ये ऐसे गुरु मिल गए हमारे को, अत्यंत अनंत करुणा करने वाले, कृपा करने वाले ये संत मिल गए हमारे को, कृपालु, ऐसे संत मिले, ऐसे साधु मिले जिन्होंने क्या कहा, सुन ये जो तेरा अनादिकाल से रोग चला आ रहा था ना, हमारे पास में उपाय है। तो कहता है मुझे भरोसा नहीं है, अरे वो सब मुझे भरोसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसी जगह पर गया था मैं, इतनी तकलीफें भुगती है हमने, इतना उपचार किया है, तुम्हें पता नहीं है मैंने कितने उपाय किए हैं इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए। तो आचार्य देव ने पूछा कि तूने क्या क्या उपाय किए आज तक? कि मैं हर महीने तो कम से कम 15 दिन उपवास करता हूं, कम उपाय नहीं किए मैंने, सारे इलाज करवा करके देख लिए है मैंने, मैं अपने इस दुख और तकलीफ का इलाज करवाने के लिए कहां कहां नहीं गया, शिखर जी तक जाकर के आया कई बार, हर साल शिखर जी की वंदना करता हूं, गिरनार जी चले गया, बुंदेलखंड की यात्रा कर ली, दक्षिण भारत के तीर्थ क्षेत्रों में चला गया, गुजरात के सब जगह के क्षेत्रों में चला गया, हमें उत्तर भारत, दक्षिण भारत, गुजरात, इधर उधर, महाराष्ट्र, सब तीर्थों की वंदना की मैंने, कभी काम नहीं हुआ, बहुत काम किया। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े लोगों को, एक्सपर्ट लोगों से सुना भी मैंने, तो भी काम नहीं हुआ, क्या बताऊंगे तुम्हें, तो पता है मैं क्या क्या कर चुका हूँ, क्या बताऊंगे तुम। तो ये एक दो शब्द बीच में कनेक्टिंग वर्ड देते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो यहाँ लिखा है, ऐसा होने पर भी। क्या कनेक्टिंग वर्ड दिया यहाँ?
ऐसे होने पर भी,
देखो पढ़ता हूँ यहाँ, शीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी अनादि बंद पर्याय की प्ररूपणा से कर्म पुद्गलों के साथ शीर नीर की भांति एक रूप होने पर भी। तेरी सारी बातें सुन ली हमने, लेकिन ये पलटी मार दी यहाँ, ऐसा होने पर भी, अब विचार कर, नई बात कहते हैं, अद्भुत बात कहते हैं, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देख अपने द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो क्या दिखेगा बोलो? तो कह रहे हैं, दुरंत कषाय चक्र के उदय की, वाक्य थोड़ा सा बड़ा है,
दुरंत
दुर अंत, जिसका अंत होना दुर्भर है, कठिन है, दुरंत अंत होना बहुत कठिन है, ऐसे कषाय चक्र, और उसके उदय की विचित्रता के वश से, क्या मतलब दुरंत कषाय चक्र क्या है? ये कषाय चक्र है चारित्र मुनि की प्रकृतियां, उनके उदय के वश से, यानी क्रोध प्रकट हो गया नहीं, क्रोध नामक अंदर की कर्म प्रकृति, मान नामक कर्म प्रकृति, दुरंत कह रहे अनंतानुबंधी प्रकृतियां, उनका कषाय चक्र उनके उदय के वश से, विचित्रता के वश से, जब उनका उदय आता है तो उसके वशीभूत हो जाता है। ध्यान रखना कर्म का उदय इसको क्रोध नहीं कराता, ध्यान रखना कर्म का उदय इसे विकार नहीं कराता, ध्यान रखना कर्म के उदय इसको पराधीन नहीं करता। ये कह रहे हैं कर्म के उदय के वश हो जाता है, पराधीन हो जाता है, स्वयं परतंत्र हुआ है, कर्म ने परतंत्र थोड़ी न किया है। ये कर्म मुझे पराधीन नहीं करते, ये कर्म मुझे परतंत्र नहीं करते। शाम को करूंगा बहुत विस्तार से चर्चा, ढाई घंटे में, शाम को ढाई घंटे के सेशन में अपनी विस्तार से चर्चा होगी इस विषय के बारे में। दुरंत कषाय चक्र को क्या कह रहे हैं यहाँ? उसके वश की विचित्रता से, उसके उदय की विचित्रता से, जब कषाय के उदय की विचित्रता दिखाई देती है तो उसके वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। द्रव्य स्वभाव कभी भी पुण्य पाप रूप परिणमित नहीं होता, द्रव्य स्वभाव कभी भी शुभ अशुभ रूप परिणमित नहीं होता। तो द्रव्य स्वभाव के नजदीक जाकर के देख, ये कषायों का प्रभाव जहाँ दिखाई देता है वो जगह अलग है, और तू जहाँ बैठा है तेरा जो स्वरूप है वहाँ कषायों का प्रभाव पड़ता नहीं है। तू पर्याय से देखता है और दुखी होता है, तो स्वभाव से देख तो दुख का काम नहीं है, अंदर से देख भाई, उनके उदय के वश में प्रवर्तित मत हो। ये शुभाशुभ भाव ये परिणमित न होता हुआ इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं। देखो भाई, ऐसा नहीं लिखा कि अशुभ भाव के रूप परिणमित नहीं होता इसलिए प्रमत्त नहीं है, और शुभ भाव रूप परिणमित भी नहीं होता इसलिए अप्रमत्त नहीं है। क्या वाक्य कह रहा हूँ?
प्रमत्त और अप्रमत्त की व्याख्या,
प्रमत्त और अप्रमत्त की व्याख्या कर रहे हैं ना ये
जी।
ये कह रहे हैं शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता इसलिए प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, समझना। ऊपर जो गाथा के अंदर बात कही थी, प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, और हमने कई तरह के इसके अर्थ किए थे जैसे विद्वानों के माध्यम से किए जाते रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे अर्थ घटित होते हैं। प्रमादी नहीं है, अप्रमादी भी नहीं है, प्रमत्त माने विकारी, अप्रमत्त माने निर्मल पर्याय वाला, विकारी और निर्मल पर्याय वाला भी नहीं है, प्रमत्त और अप्रमत्त माने घटा भातवा गुणस्थान वो भी नहीं है, प्रमत्त और अप्रमत्त माने गुणस्थान अतीत वो भी नहीं है। और ये बात आपको बताई जा चुकी है पहले, गुणस्थान अतीत नहीं है का अर्थ गुणस्थान वाला भी नहीं है और गुणस्थान अतीत भी नहीं है, माने संसारी भी नहीं है और मुक्त भी नहीं है, क्योंकि संसारी और मुक्त ये दोनों अवस्थाओं के नाम है और ये सभी अवस्थाओं में व्याप्त रहने वाला ज्ञानी भगवान। इतनी बातें प्रमत्ता प्रमत्त के संदर्भ में देखी हमने, अब एक और नई बात कहते हैं, प्रमत्ता प्रमत्त क्यों नहीं है ये बताओ। क्या मुकुंद भाई? आचार्य अमृत चंद्र स्वामी कह रहे हैं ये भगवान आत्मा ये प्रमत्ता प्रमत्त क्यों नहीं है, है क्यों नहीं ये प्रमत्ता प्रमत्त, कुछ तो बताओ। इसलिए नहीं है प्रमत्ता प्रमत्त क्योंकि शुभाशुभ भाव के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, शुभाशुभ रूप परिणमित नहीं होता
तो वो पुद्गल है,
शुभाशुभ रूप परिणमित नहीं होता, परिणमित नहीं होता, हाँ नहीं होता, उस रूप परिणमित नहीं होता, ये पर्याय है, स्वभाव स्वभाव परिणमन से भिन्न है, वो स्वभाव का परिणमन नहीं होता, वो स्वभाव परिणमन से अप्रभावित रहता है। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में, जिस क्षेत्र में रहे, स्वभाव सदा काल एक रूप रहता है, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। अग्नि का स्वभाव कैसा है? उष्ण है, हिंदुस्तान में कि अमेरिका में भी,
हर जगह पर,
हर जगह अपने भारत क्षेत्र में आर्य खंड में भी मिले चरण में भी
दोनों
विदेश क्षेत्र में तो ठंडी होती होगी विदेश क्षेत्र में भी क्या गर्मी का क्या कारण वहां पे विदेश क्षेत्र में तो अग्नि ठंडी होती है किसी भी जगह पर चले जाओ स्वभाव उसे कहते हैं महेंद्र भाई
बदल नहीं
जो क्षेत्र और काल से अप्रभावित हो
वाह वाह
उसका नाम है स्वभाव क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता स्वभाव पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता स्वभाव पर नमक कैसा होता है
खारा ही होता है
खारा ही होता है पंचम काल में तो खारा है चौथे काल में चौथे काल का नमक कैसा होगा
वो भी खारा ही था
चौथे काल का ही खारा होगा क्या बात कर रहे हो आप भोग भूमि के काल में
वो भी खारा था
और छठे काल में कैसा होगा
वो भी होगा
खारा ही होगा क्या बात कर रहे हो आप काल से बहुत चीजें बदलती हुई देखी है हमें मैंने अपनी काल चक्र वाली पुस्तक के अंत में दिए कुछ प्रश्नोत्तर और उन प्रश्नोत्तरों के अंदर एक प्रश्न ये उठाया हमने ये काल परिवर्तन देखा तो इससे हमने महसूस किया कि समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है जहाँ कर्म भूमि थी वहाँ भोग भूमि हो जाती है कल्प वृक्ष का काल आ जाता है जहाँ कल्प वृक्ष थे वो सब नष्ट हो जाते हैं कभी कुलकर्म का काल आ गया है कभी युगलिया का काल आ गया है कभी कैसा हो गया पंचम काल आ गया छठा काल आ गया परिस्थितियां बदल जाती है चौथे में तीर्थंकर आदि हुआ करते थे मोक्ष जाते थे पंचम में नहीं होते छठे काल के अंदर और ज्यादा मांस भक्षण आदि की प्रवृत्तियां बढ़ेगी और अंत में जाते जाते सब प्रलय आ जाएगी सब कुछ बदल जाता है ऐसा प्रश्न उठाया तो क्या सब कुछ बदल जाता है तो मैंने वहां उसका जवाब देते हुए लिखा कि सुनो सब कुछ नहीं बदलता वस्तु का स्वरूप काल से अप्रभावित रहता है
तो
कभी नहीं बदलता न केवल वस्तु का स्वरूप देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ये कभी नहीं बदलता पंच परमेश्वरों का स्वरूप ये कभी नहीं बदलता अरे द्रव्य का मूल स्वरूप ये कभी नहीं बदलता
और वैसे ही मैं हूँ
वैसा ही मैं इसलिए मैं कभी बदलने वाला नहीं अरे बदल जाऊं मैं कभी बदलता ही नहीं किसान ऐसा जब आता है ना बहुत आता हुआ दिखता है तो हमने अच्छे अच्छों को बदलते हुए देखा है इसलिए हमें विश्वास नहीं हुआ कि नहीं भाई आप एक गलत फहमी में मत रहना हम अपने आप को पैसे से भिन्न हम अपने आप को देह से भिन्न हम अपने आप को राग द्वेष रूपी पर्यायों से भिन्न पर्याय मात्र से भिन्न देखते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता ये परिवर्तन पर्यायों का काम है ये परिवर्तन ऊपरी ऊपरी है ये ऊपर ऊपर कितना भी परिवर्तन होता रहे अंदर मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता सुनो लोहा सोना बन जाए
जी
सोना कोयला बन जाए कोयले से रत्न बन जाए ये परिवर्तन तो संभव है लेकिन ये चेतन कभी अचेतन हो जाए ये असंभव है मैं कभी अचेतन नहीं होता कितने भी कर्मों का उदय आए कैसी भी परिस्थितियां बने मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अरे ये जो दुख 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 दिखाई देता है ये पर्याय के सन्मुख जाकर के देखने पर तो दुखी दिखाई देता है द्रव्य स्वभाव के सन्मुख जाकर के देखूं तो अनंत असिंद्रिय आनंद भरा हुआ नजर आता है अंदर स्वभाव में गुण धर्म और शक्तियां उछलती हुई नजर आती है उछलती हुई शक्तियां असिंद्रिय आनंद और आनंद रस का घन पिंड ये भरा पूरा तत्व दिखाई देता है ये मैं हूं भाई साहब ये दृष्टि का विषय है यहाँ जो प्रकरण चल रहा है ये दृष्टि के विषय का प्रकरण चल रहा है दृष्टि देने योग्य क्या है कोई इससे चल ग्रहण नहीं करे भाई ये तो पर्यायों का निषेध करते हैं वो सब है या कण ऐसा होने पर भी ठीक है लेकिन एंजल बदल करके बात करो भाई साहब हम दूसरी विवक्षा से बात कह रहे हैं तुम उसको भी तो देखो आप क्या सोच रहे हैं हमने जो वर्तमान में बात कही है तुम उसको नहीं देखना चाहते हो क्या दो चीजें हैं अब इन दोनों चीजों में से कौन सी बात को स्वीकार करने से कल्याण होगा ये विचार तो करना पड़ेगा ना चॉइस आपके पास में है वस्तु में पहलू दोनों है एक पर्याय पक्ष है एक द्रव्य पक्ष है दो पक्ष है दो पहलू वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है तुम्हें निर्णय करना है कि पर्याय को देखते रहना है कि द्रव्य को देखना है तुम्हें निर्णय करना है कि द्रव्य को देखना है या पर्याय को देखना है नक्की करो दो में से एक का चुनाव करो ये निर्णय आपके हाथ में है लेकिन ध्यान रखना पर्याय को चुनने वाले पर्याय मूल होते हैं ये पर समय कहलाते हैं ये मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं और द्रव्य को चुनने वाले ये मुक्त हो जाते हैं, ये परमात्मा बन जाते हैं। निर्णय आपके हाथ में, बोलो। इस पर्याय को चुनने वाले का संसार परिभ्रमण रुकेगा नहीं और इस द्रव्य को चुनने वाले का संसार परिभ्रमण होगा नहीं, वो सिद्धालय में जाकर के विराजमान होगा। बोलो क्या चुनना है तुम्हारे को? यार ये पर्याय वाला ही ठीक है, घूमने फिरने को तो मिलता है कम से कम, ये चुन लिया तो घूमना फिरना ही बंद हो जाएगा। ये घूमने फिरने के शौकीन लोग होते हैं ना ज्यादा,
वो लोग ऐसे समझते हैं,
वो ऐसा समझते हैं घूमने फिरने में आनंद है। अब वो एक बात, पानी पेड़ पहाड़ कहाँ घूमेगा? इसके अलावा तो कहीं घूमने फिरने की जगह है नहीं, और कहाँ घूमेगा बतलाओ? अरे अनादि काल से घूम ही घूम रहा है, ये घूमने की उलझन कब मिटेगी? एक बार इस स्वभाव पर दृष्टि दे, पर्याय मूल मत बन, द्रव्य की तरफ दृष्टि दे। जैसा द्रव्य की तरफ दृष्टि देता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये सब छूटता हुआ नजर आता है, जो कुछ भी मेरे साथ पर्याय ले, ये सब छूट जाएगा तो क्या होगा? मैं जैसे जैसे उधर बढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि ये छूट जाएगा, बिजनेस छूट जाएगा, धन पैसा डॉलर सब छूट जाएंगे, परिवार छूट जाएगा, घर गृहस्थी छूट जाएगी, और ये सब भाई ये सब सहयोग सब छूट जाएंगे यदि उधर जाऊंगा तो। फिर मैं अकेला पड़ जाऊंगा, अकेले मन नहीं लगता मैं। क्या तो कहा, सुन ये जितना छूटेगा ना उससे अनंत गुना ज्यादा अनंत गुण समुदाय मिलेगा तेरे को, तेरा मन लगाने के लिए। और ऐसा मन रमेगा, जो मन रमे विषयानी में, योगसार की गाथा कह रहा हूं, योगसार की गाथा है, जो मन रमे विषयानी में यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहे हैं योगी जन तो शीघ्र जावे मोक्ष, शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति हो जावे। मन जैसा रमता है ना तुम्हारा, जैसा रस आपको डोसे खाते समय आता है ना, जैसा रस आपको खीर पूरी खाते समय आता है, खीर खाते समय जैसा मजा आता है, उसका शतांश भी आनंद यदि तुझे स्वभाव की चर्चा में आ जावे तो समझ ले कल्याण हो
जाए।
ये रस नहीं आता हमारे को, चेहरा मुरझाया रहता है, उनका रहता है, उनका रहता है, और फिर कभी तुम्हारा नाम पुकारे तो हाँ ऐसा जागृत होता है। हम अभी तक शुद्धात्मा कह रहे थे तो ऐसा सुन रहा था धीरे धीरे, अरे वो चर्चा तेरी चर्चा चल रही थी, वो शुद्धात्मा की चर्चा तेरी चर्चा है भाई, तू क्या देख रहा है? ये कह रहे हैं दुरंत कषाय चक्र के उदय से वशीभूत होता हुआ, वशीभूत होता हुआ उस रूप परिणमित नहीं होता, कषाय वो रूप परिणमित नहीं होता, तो भाई होगा ठीक है, हम उस रूप परिणमित नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये जो शुभाशुभ भाव है ना, ये शुभाशुभ भाव ये जड़ है, ये जड़ कह रहे हैं यहाँ शुभाशुभ भावों को। यद्यपि विवक्षा भेद से कहीं कहीं शास्त्रों में उसे चेतन का कहा है, भाव चेतन के, लेकिन यहाँ शुद्ध नय की दृष्टि से जब विचार किया जाता है तो शुभाशुभ भावों को जड़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन शुभाशुभ भावों का जन्मदाता कौन है? वो कर्म, द्रव्य कर्म का उदय, द्रव्य कर्म के उदय में चार तमोगुणी का उदय। देखो ऐसा होता है ना, जैसा प्रवर्तन होता हुआ दिखाई देता है उससे ये पहचाना जाता है कि इसके अंदर में क्या चल रहा था, उदय किस चीज का चल रहा था। उदय हो तो वैसा प्रवर्तन हो ये गारंटी नहीं है, उदय से संयोगों का तो निमित्त निमित्त घना संबंध है, उदय से संयोग का माने द्रव्य कर्म से नौकर्म का तो संबंध है, लेकिन द्रव्य कर्म के उदयानुसार भाव कर्म का भी घना संबंध तो है, नियम नहीं है।
अच्छा,
इस पॉइंट को भी शाम को खोलेंगे। माने इस द्रव्य कर्म के उदय में क्रोध आया, चारित्र नाम की एक कर्म प्रकृति थी उसके उदय में गुस्सा आया, चारित्र मोहनी कर्म प्रकृति के उदय में, समझ लीजिए चारित्र मोहनी की मान प्रकृति का उदय आया तो घमंड हुआ, लोभ प्रकृति का माया प्रकृति का उदय आया तो माया लोभ रूप परिणमन हुआ, चारित्र मोहनी कर्म प्रकृति के भय नामक कर्म प्रकृति का उदय आया तो भय रूप परिणमित होता हुआ दिखाई दिया। ये सब दिखता है ऐसा, लेकिन नियम के डर से लगाना तो सुन भाई, वो कर्म इस जीव को विकारी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ बीच में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या चांस है संभलने का, क्या चांस है सुधरने का, क्या मौका है हमारे पास में। वो भाव उसका उदय आया और इसने किया पुरुषार्थ और हटा लिया उपयोग वहां से और नहीं किया क्रोध, तो क्रोध उदय में आकर के साइड पतली गली से निकल जाएगा।
हम उसमें वश होता है, हम उसमें तन्मय होते अपनी वीकनेस से,
अपनी वीकनेस से होते। अंदर में उदय आया और तेरा पुरुषार्थ क्या काम कर रहा है ये बता, वहां पुरुषार्थ चलेगा। इसलिए इन्होंने जो बात कही है ना, यहाँ वश रूप प्रवर्तन करता हुआ, देखो वापस पढ़ता हूँ, वाक्य याद हो गया होगा आप सबको। द्रव्य स्वभाव के नजदीक आकर के देखा जाए, स्वभाव के नजदीक आकर के देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के, दुरंत अंत होना जहां मुश्किल है, जिसका अंत नहीं दिखाई देता है, ऐसे कषाय चक्र के उदय के माने कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता, ये विचित्रता है उन कषायों के उदय में किसी के कैसे परिणाम होते हुए दिखाई देते हैं, किसी के कैसे होते हुए दिखाई देते हैं। मेरा एक प्रसिद्ध उदाहरण है जिसमें मैं कहता हूँ, एक बालक, छोटा बालक अपने माता पिता के साथ में जा रहा था रोड पर, सुना
है,
रोड पर जा रहा था और केले के छिलके पर पांव रखा और फिसल गया। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिसल गया तो जो खुद फिसला था ना, क्या वो तो रोने लगा, वो तो रोने लगा। उसकी मम्मी जो साथ में जा रही थी, माता पिता के साथ में जा रहा था, मम्मी जो साथ में जा रही थी, मम्मी घबरा गई, एकदम बच्चा गिर गया और वहीं बैठे हुए कुछ लड़के बाइक पे बैठे थे, जैसे ही उसका पांव रखा और फिसल गया, उनको हंसी आ गई, वो हंसने लग गए, गिर गया, हंसी आ गई। और साथ में चलते हुए जो पिता थे, जब इस घटना को देखा तो उसको उठा के एक खेच के चाटा मारा, ना देख के नहीं चलता है, खेला था तेरे को, भागे मत। एक को क्रोध का परिणाम आ रहा है, एक को भय का परिणाम हो रहा है, एक को हादसे का परिणाम हो रहा है, ये चक्कर क्या है। घटना एक और भाव सबके अलग
अलग,
क्या चक्कर है बताओ कुंद भाई, क्या चक्कर है।
उदय
अलग अलग,
सबका उदय अलग अलग है,
उदय अलग अलग है। जिसके अंदर में चारित्र मोनी की 25 प्रकृति है ना
जी,
उनमें से हास्य नामक कर्म प्रकृति का उदय आए
जी,
तो बाहर में हंसी आती हुई दिखाई दे
जी।
शोक नामक कर्म प्रकृति का उदय आवे तो शोक संतप्त होता हुआ दिखाई देता है। क्रोध कर्म प्रकृति के उदय में गुस्सा आता है, भय कर्म प्रकृति के उदय में घबराहट होती है। ये कर्म प्रकृति के उदय तो ये होती है, ये तू उसके आधीन होता है तब होती है। अब इसको उल्टा लगाओ, गुस्सा करता हुआ कोई व्यक्ति दिखा तो नियम से कषाय का उदय चल रहा है
उदय।
अब इधर से देखो, ये कर्म का उदय चल रहा है तो गुस्सा करेगा, ये गारंटी नहीं,
बस सही है।
इधर से तो इधर है, जो दिखाई दिया उसके आधार पर तो कह सकते नियम से उदय चल रहा है वैसा,
बस सही।
ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर में उदय मान प्रकृति का चले और यहाँ बाहर में गुस्सा दिखाई दे,
नहीं।
ऐसा नहीं हो सकता। यदि गुस्सा दिख रहा है क्रोध कर्म प्रकृति का, यदि घबराहट दिख रही है भय कर्म प्रकृति का उदय, ठीक है, इसका उदय कराता नहीं है। लेकिन ये क्या करता है, ये पुरुषार्थहीन व्यक्ति उसके वश वर्तन पने को प्राप्त होता है। ये पुरुषार्थहीन है ना, सही कहता है मैं क्या करूं, नींद क्यों आ रही है, मैं क्या करूं, दर्शन मोहनी की वो निद्रा प्रकृति का उदय, तो निद्रा कर्म का उदय आएगा तो आएगा ही ना, नींद तो आएगी ही ना। सुन, निद्रा कर्म प्रकृति का उदय हुए क्या, और तू खड़ा होकर के चलता रहे तो नींद नहीं आएगी तेरे को, वो कर्म का उदय भाग जाएगा। तेरा पुरुषार्थ युगल जी बाबू जी ऐसा कहा करते थे, जैसा प्रवचन सभा में नींद बहुत आती है, क्या करें साहब, बैठते ही सुनने के लिए आते हैं, तो वो कहा करते थे कि यदि तुझे नींद आती है तो खड़े होकर के सुन, अब देखें कैसे नींद आती है, अब गिरेगा क्या। खड़े खड़े भी आ जाएगी नींद, सहारा नहीं लेना है किसी के, टिकना नहीं है, टिक जाए तो खड़े खड़े भी सो जाएगा, टिकना नहीं है, सीधा खड़ा होकर के सुन। अब फिर भी तुझे लगता है आंखें बंद हो रही है तो एक काम कर, पीछे जा सभा के पीछे और इधर से उधर टहलता हुआ सुन। अब आने दे, नींद कैसे आती
तो पुरुषार्थ है,
तो पुरुषार्थ उसको टालने का बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ किया। जब क्रोध का जायका उदय आए, जब गुस्से का परिणाम आए तो क्या विचार करना, ये तत्व ज्ञान का विचार कर, वस्तु स्वरूप का विचार कर, इसको टालने के लिए ये कर्म पूरब किए छोटे, ऐसा विचार कर। विचार तो करना पड़ेगा, देखो लेकिन हुआ क्या, यहाँ घटना तो देखे अपन, बात तो करें पूरी। क्या कह रहे हैं, दुरंत कषाय चक्र के उदय की, माने उस कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से, ये विचित्रता दिखाई दे रही है उसके उदय की, इस विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, कौन पैदा करते हैं पुण्य पाप को, समस्त अनेक शुभाशुभ भाव, शुभ भावों से पुण्य बनता है, अशुभ भावों से पाप बनता है, उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। तो कौन परिणमित होता है, कौन परिणमित होता है वो सुने,
पर्याय
जड़ है, पर्याय परिणमित होती है, ये विभाव है, ये शिवाजी भाव, ये परिणमित होते हैं पुण्य पाप रूप। मैं पुण्य पाप नहीं हूँ, मैं शिवाजी भाव रूप भी नहीं, ये शिवाजी भाव मेरे भी नहीं, ये शिवाजी भाव मुझ में नहीं है, ये शिवाजी भाव मुझसे बाहर बाहर है, पानी में तेल की तरह तैरते है, बस बाहर बाहर कांटोची पैदा हो जाती। सिमंदर भगवान की पूजन में हल्का चंद, शुभ अशुभ व्रत एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है, कांटों की पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया की घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। क्या कह दिया, कांटों की पैदा हो जाती, कहाँ पे मुकुंद भाई, चैतन्य सदन के आंगन में, आंगन में अंदर में, ये शुभ और अशुभ की रस्तियां जब उठती है तो कांटे पैदा होते हैं, लगता है आपको कांटे जैसी चुभन होती है शुभ भाव में। ये कह रहे हैं ये शुभ इसमें तू इसलिए अटकता है कि तुझे इसमें आनंद आता है, तुझे ये शुभ से पीड़ा दिखाई नहीं देती, तो बहुत खतरनाक है महेंद्र भाई, ये शुभ भाव के काल में शुभ में पीड़ा दिखाई दे रहे, शुभ भाव के काल में हमारे को आकुलता दिखाई दे रहे, ये शुभ भाव के काल में हमारे को टेंशन दिखाई दे रहे, ये शुभ भाव में हमारे को आकुलता व्याकुलता जंजाल दिखाई दे रहे, दिखे तो सही है, एक बार दिखता है क्या, इसमें तो संतुष्ट हो जाता है, इसमें तो चैन मानता है, तीन ही को क्या मानस गिनत चैन, क्या बाबा जी लाइन है, तीन ही को सेवत गिनत चैन, क्या डाला की दूसरी डाल की पंक्ति है, और ये कह रहे हैं कि इनको गिनता हुआ शुभ और अशुभ की वृत्तियों को, मेरे सुत किए मैं सबल दी बेरूप सबल मूरत प्रवीण, इनका सेवन करता हुआ शुभ शुभ का सेवन करता हुआ, ये ऐसा समझता है थोड़ा पुण्य का उदय आया, ये तो बहुत चैन मिल रहा है, आनंद आ रहा है, अरे आनंद नहीं आ रहा है, लपेटे में आ रहा है, उलझन में आ रहा है, तुझे दिखता नहीं है, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर कि भाई तू उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, जायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, ऐसा कह दिया, जायक तो जायक ही रहेगा, कभी जड़ रूप परिणमन नहीं होता, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, इसलिए प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, ध्यान देना, शुभाशुभ रूप परिणमित नहीं होता इसलिए प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, वे ऐसा नहीं कहना चाह रहे थे, मैंने बीच में वाक्य बोला था, वे ऐसा नहीं कहना चाह रहे थे कि अशुभ रूप परिणमित नहीं होता इसलिए तो प्रमादी नहीं, और शुभ रूप परिणमित नहीं होता इसलिए अप्रमत्त नहीं,
दोनों
दोनों भाव, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों भाव प्रमत्त है,
बात सही है,
दोनों में प्रमाद है, अशुभ में तो प्रमाद है ही, शून्य भी प्रमाद है, अप्रमादी अवस्था तो शुद्ध पे हो गए। हाँ वो अप्रमादी अवस्था है, छठे में तो प्रमाद ही ना था, शुभ हो चाहे अशुभ। छठे गुणस्थान में तो वैसे भी काल बहु बहुल से शुभ रूप ही होता है, जैसे प्रमत्त कहा गया है शास्त्रों, छठे गुणस्थान का नाम प्रमत्त है ना, छठे गुणस्थान का नाम तो प्रमत्त है, ठीक है। तो उसमें भाव कैसे होते हैं, किंचित कदाचित अशुभ और बाकी शुभ, शुभ रूपी है, अशुभ उपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है ऐसा कहा जाता है, शुभ ही है उसके तो शुभ है ना, इसका मतलब शुभ को भी प्रमत्त कह रहे हैं। प्रमाद क्यों कह रहे हैं उसे, उस शुभ को प्रमाद इसलिए कह रहे हैं कि तू स्वरूप में असावधान है,
रुक जाता है,
रुक जाता है, बाहर क्यों निकला ये बता, बहुत खतरनाक है शुभ भाव। आपको पता है शुभ भाव की सजा नकुल और सहदेव को जो मिली है, कितनी बड़ी सजा मिली है, नरेंद्र भाई 33 सागर
जेल मिली है,
जेल मिली है, जेल 33 सागर के लिए कैद हो गए वहां। और जो यहाँ छठे सातवें गुणस्थान का प्रचुर स्व संवेदन अतिन्द्रिय आनंद था वो छीन लिया गया तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाला, और अब क्या कर रहे हैं, तीन कषाय चौकड़ी के सद्भाव की भट्टी में जल रहे हैं, एक ही स्वभाव है। अब सम्यक दर्शन है ना, अनंतानुबंधी के अभाव जन्य आनंद तो है लेकिन तीन के सद्भाव जन्य कषायों के वेदन को भुगत रहे हैं, कहां तीन के अभाव को, इन तीन के अभाव में आनंद भोग रहे थे और अब इन तीन के सद्भाव में तकलीफ पीड़ा है, वहां क्या क्या अपराध किया, गलती क्या की थी ऐसी, शुभ भाव
पर में झांका
स्वरूप से बाहर निकलना यही अपराध है, आत्म स्वरूप से बाहर निकलना ये बहुत बड़ा अपराध है, ये भूल है इस जीव की। इसलिए कह रहे हैं भाई तू प्रमत्त अप्रमत्त रूप से परिणमित नहीं होता, तू तो भिन्न है इनसे, अपने आप को इन दोनों से भिन्न देख। और देखो वही अंतिम वाक्य इस पैराग्राफ का, बात पूरी करेंगे फिर अगले पैराग्राफ से अगले साल चर्चा करेंगे, क्या कह रहे हैं यहाँ, वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से, अन्य द्रव्यों के भावों से, पर भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। वाव ये क्या शुद्धता है मेरी, ये कैसी शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं, ये वो शुद्धता बतला रहे हैं, समस्त पर द्रव्यों और पर भावों से भिन्नता ये शुद्धता है,
बात सही है,
पर से अप्रभावित रहना ये शुद्धता है, सभी प्रभावित नहीं हुआ ये शुद्धता है, अनादि काल से आज तक अनंत पुद्गल परमाणुओं के बीच में घिरा होने के बावजूद भी मेरा अंश मात्र भी पुद्गल नहीं हुआ, ये मेरी शुद्धता है, ये मेरी पावर है। लोग कहते हैं ना संगति का असर, इनकी संगति में रहेगा तो ऐसा हो जाएगा, इनकी संगति में रहेगा तो ऐसा हो जाएगा, तो पर्याय अपेक्षा से बात है, स्वभाव के समीप जाकर के देखो तो कह रहे हैं अनादि काल से पुद्गलों की संगति में रहने पर भी, जड़ की संगति में रहने पर भी जड़ नहीं हुआ,
इतना बड़ा चमत्कार,
चारों तरफ से अनंत पुद्गल चिपके हैं, अनंत पुद्गल चिपके हुए हैं, कर्म वर्गणाएं चिपकी हुई है, आर वर्गणाएं और कर्म वर्गणाएं एक क्षेत्राल का संबंध को प्राप्त है लेकिन वो अनंत और मैं अकेला, ताकत तो देखो इसकी पावर तो देखो मुकुंद भाई, एक तरफ अनंत है और दूसरी तरफ अकेला है, उसके बावजूद वे अनंत इसका कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सके, ये कितना पावरफुल तत्व होगा, कैसे तत्व की बात कह रहे हैं। तो उनके भाव रूप या उनसे भिन्न रूप रहता हुआ उपासित होता हुआ उनसे भिन्न अनुभूति में आता हुआ ये शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप तो अंदर में सदा काल मौजूद है लेकिन शुद्ध की स्वीकृति बिना उस शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होता, इसलिए अनुभव करने के लिए उस शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए उसे अतिंद्रिय आनंद की विषय वस्तु बना लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही उपाय है कि अपने आप को शुद्ध स्वरूप फील करो, अपने आप को पर भावों से भिन्न देखो, अपने आप को पर पदार्थों से भिन्न देखो, अपने आप को जड़ से भिन्न देखो, ये भेद विज्ञान का अभ्यास करो, ये 7 दिन अभ्यास करने जैसा नहीं है, साल में 7 दिन तो थोड़ा सा अभ्यास कर ही ले, 5-7 दिन के लिए आए हैं पंडित जी, इंडिया से आए हैं इतने दूर से तो बैठ ही ले रहे हैं, ये 5-7 दिन का काम नहीं है, ये तो डेली प्रैक्टिस चाहिए, डेली धर्म कब करे महेंद्र भाई,
24/7
बोलो कि नहीं नहीं कई लोग मिलते हैं वो ये कहते हैं तकलीफ के काल में कई मिलते हैं वो ये कहते हैं कि भादवे में भाद्र मास में कई कहते हैं पर्युषण में करना चाहिए धर्म कब करें बोलो पर्युषण में करना चाहिए तो बताओ दवाई कब लेनी चाहिए
रोज
रोज दवाई जब रोग आए तब और रोग बना हुआ हो तो क्या करना चाहिए कि दवाई रोज लेनी चाहिए ये तेरा रोग जब तक ना मिटे तब तक ये दवाई लेते रहना ये दवाई है ये भव रोगों का इलाज है ये इलाज कब होगा इलाज होगा निश्चित तौर पर होगा उपाय यही है और यदि तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो मैंने एक दिन बात कही थी डोज बढ़ा देना यही थी क्या
यही की थी
यही की थी खुराक बढ़ा देना बस कुछ नहीं स्वाध्याय ज्यादा कर लो किसान शांति नहीं हो रही है शांति नहीं मिल रही है हमारी खुराक और लो अशांति के काल में ज्यादा इस खुराक की जरूरत है जब चित्त और मन अशांत हो तो इसकी जरूरत है अरे वेद विज्ञान का अभ्यास करो देह से भिन्न जायक का अनुभव करने का प्रयास करो एक क्षण वो आएगा कि तुम्हारा ये अभ्यास अभ्यास रुक जाएगा और स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी हम सभी को ऐसी अनुभूति हो इसी भावना से बात को विराम देते हैं।